आप सुन रहे हैं उपन्यास मैला आंचल, जिसके लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु और इसे स्वर दिया है आपके अपने दीपक यादव ने।
डॉक्टर पर यहां की मिट्टी का मोह सवार हो गया। उसे लगता है मानो वो युग युग से इस धरती को पहचानता है। ये अपनी मिट्टी है। नदी तालाब, पेड़ पौधे, जंगल मैदान, जीवन जानवर, कीड़े मकोड़े, सभी में वो एक विशेषता देखता है। बनारस और पटना में भी गुलमोहर की डालियां लाल फूलों से लग जाती थीं। नेपाल के तराई में पहाड़ियों पर पलास और अमलतास को भी गले मिलकर फूलते देखा है, लेकिन इन फूलों पर रंगों ने उस समय पहली बार जादू डाला है। गोल्ड मोहर, गुलमोहर, कृष्णचूड़ा। गुलमोहर का कृष्णचूड़ा नाम यहाँ कितना मौजू लगता है। काले कृष्ण के मुकुट में लाल फूल कितने सुंदर लगते होंगे। आम से लदे हुए पेड़ों को देखने के पहले उसकी आंखें इंसान के उन टिकोलों पर पड़ती हैं, जिन्हें आम के गुठलियों से सूखे गूदे की रोटी पर जिंदा रहना है। और ऐसे इंसान, भूखे अतृप्त इंसानों की आत्मा कभी भ्रष्ट नहीं हो या कभी विद्रोह नहीं करे, ऐसी आशा करनी ही बेवकूफी है। डॉक्टर यहाँ की गरीबी और बेबसी को देखकर आश्चर्यचकित है। वो संतोष कितना महान है जिसके सहारे यह वर्ग जी रहा है। आखिर वो कौन सा कठोर विधान है जिसने हजारों हजार सुदितों को अनुशासन में बांध रखा है। कब से जकड़े हुए दोनों फेफड़े, ओढ़ने को वस्त्र नहीं, सोने को चटाई नहीं, पुआल भी नहीं। भीगी हुई धरती पर लेटा निमोनिया का रोगी मरता नहीं, जी जाता है। कैसे? यहां विटामिनों की किस्में उनके अलग अलग गुण और आवश्यकता पर लंबी और चौड़ी फहरिस्त बनाकर बांटने वालों की बुद्धि पर तरस खाने से क्या फायदा। मच्छरों की तस्वीरें, इससे बचने के उपायों को पोस्टरों पर चित्रित करके अथवा मैजिक लालटेन से तस्वीरें दिखाकर मलेरिया की विभीषिका को रोकने वाले किस देश के लोग थे। यहाँ तो उन मच्छरों की तस्वीरें देखते ही लोग कहते हैं, पुरानिया जिला के लोग मच्छर के लिए बेकार बदनाम है। देखिए पश्चिम का मच्छर कितना बड़ा है, एक हाथ लंबा देह, चार हाथ मंड, बाप रे। डीडीटी और मसहरी की बात तो बहुत बड़ी बात हुई। देह में कड़वा तेल लगाना भी स्वर्गीय भोग विलास में गण्य है। तेल फुलेल तो जमींदार लोग लगाते हैं। स्वर्ग की परियां तेल फुलेल लेकर पुण्य करने वालों की सेवा करती हैं। खेतों में फैली हुई काली मिट्टी की संजीवनी इन्हें जिलाए रहती है। शस्य श्यामला सुजला सुफला, इनकी मां नहीं, अब तो शायद धरती पर पैर रखने का भी अधिकार नहीं रहेगा। कानून बनने के पहले ही कानून को बेकार करने के तरीके घड़ लिए जाते हैं। सुई के छेद से हाथी निकाल लेने की बुद्धि ही आज सही बुद्धि है और लोग तो बकवास करते हैं। बुद्धि विभग्र रोग से पीड़ित है। जिसके पास हजारों बीघे जमीन है वो 5 बीघे जमीन की भूख से छटपटा रहा है। बेजमीन आदमी आदमी नहीं, वो तो जानवर है। डॉक्टर ममता को लिखता है, तुम जो भाषा बोलती हो उसे ये नहीं समझ सकते, तुम इनकी भाषा नहीं समझ सकती, तुम जो खाती हो ये नहीं खा सकते, तुम जो पहनती हो ये नहीं पहन सकते, तुम जैसे सोती हो, बैठती हो, हंसती हो, बोलती हो, ये वैसा कुछ नहीं कर सकते। फिर तुम इन्हें आदमी कैसे कहती हो? वो आदमी का डॉक्टर है, जानवर का नहीं। टेस्ट ट्यूबों में आदमी और जानवर के खून अलग अलग रखे हुए हैं। दोनों के सीरम की अलग अलग जरूरत है। डॉक्टर आदमी के खून वाले ट्यूब को हाथ में लेकर जरा और ऊपर उठाकर गौर से देखता है। वो जानना चाहता है, देखना चाहता है कि इन इंसानों और जानवरों की वीर रक्त कणिका में कितना विभेद है, कितना सामंजस्य है। खून से भरे हुए टेस्ट ट्यूबों में अब कोई आकर्षण नहीं। क्या करेगी वो संजीवनी बूटी खोजकर? उसे नहीं चाहिए संजीवनी। भूख और बेबसी से छटपटाकर मरने से अच्छा है मैलेग्नेंट मलेरिया से बेहोश होकर मर जाना। तिल तिल कर घुल घुल कर मरने के लिए उन्हें जिलाना बहुत बड़ी क्रूरता होगी। सुनते हैं महात्मा गांधी ने कष्ट से तड़पते हुए बछड़े को गोली से मारने की सलाह दी थी। वो नए संसार के लिए इंसान को स्वच्छ और सुंदर बनाना चाहता था। यहाँ इंसान है कहाँ? अभी पहला काम है जानवर को इंसान बनाना। उसने ममता को लिखा, यहाँ की मिट्टी में बिखरे लाखों लाख इंसानों की जिंदगी के सुनहरे सपनों को बटोर कर, अधूरे अरमानों को बटोर कर, यहाँ के प्राणी के जीवन कोश में भर देने की कल्पना मैंने की थी। मैंने कल्पना की थी हजारों स्वस्थ इंसान हिमालय की कंदराओं में, त्रिवेणी के संगम पर, अरुण, तिमुर और सुनकोशी के संगम पर एक विशाल डैम बनाने के लिए पर्वत तोड़ परिश्रम कर रहे हैं। लाखों एकड़ बंध्या धरती, कोशी कवलित, मरी हुई मिट्टी शस्त्र श्यामला हो उठेगी। कपन जैसे सफेद बालू भरे मैदानों में धाने रंग की जिंदगी के बेल लग जाएंगे। मकई के खेतों में घास गढ़ती हुई औरतें बेवजह हंस पड़ेंगी। मोती जैसे सफेद दांतों की चमक। डॉक्टर का रिसर्च पूरा हो गया है, एकदम कंप्लीट। वो बड़ा डॉक्टर हो गया। डॉक्टर ने रोग की जड़ पकड़ ली है। गरीबी और जहालत इस रोग के दो कीटाणु हैं। एनोफिलीज से भी ज्यादा खतरनाक, सैंडफ्लाई से भी ज्यादा जहरीले हैं यहाँ के। नहीं, शायद वो कालीचरण की तरह तुलनात्मक उदाहरण दे बैठेगा। कालीचरण किसानों के बीच भाषण दे रहा है,
ये पूंजीपति और जमींदार खटमलों और मच्छरों की तरह शोषक हैं। खटमल इसीलिए बहुत से मारवाड़ियों के नाम के साथ मल लगा हुआ है, और जमींदारों के बच्चे मिस्टर कहते हैं, मिस्टर मच्छर।
दरार पड़ी दीवार, ये गिरेगी, इसे गिरने दो। ये समाज कब तक टिका रह सकेगा? कविवर हंस कुमार तिवारी की कविता की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। दुनिया फूस बटोर चुकी है, मैं दो चिंगारी दे दूंगा। गुलमोहर आज का फूल, सारी कुरूपता जल रही है, लाल लाल। कमल, कमला नदी के गड्ढों में कमल की अधमुंदी कलियां अपने कोश में नई जिंदगी के पराग भरकर खेलना ही चाहती हैं।
ओ तुम कमला, इतनी रात में अकेले आई हो?
डॉक्टर बोलो, सच बोलो, मैं डेढ़ घंटे से खड़ी देख रही हूँ, तुमको क्या हो गया है? क्या तुम्हें भी अब डर लगता है, सिर चकराता है? देखो कान के पास गर्मी सी मालूम होती है। डॉक्टर, डॉक्टर
प्यारू।
कमल की भीनी भीनी खुशबू, कोमल पंखड़ियों का कमनीय स्पर्श। कमला,
ओह मैं कमला की गोद में हूँ, मुझे नींद न लग जाए,
मुझे उठकर बैठ जाना चाहिए, मेरी मंजिल।
कमला चलो तुम्हें पहुंचा दूं।
लेटे रहो बेटा।
ओ मौसी तुम आ गई।
प्यारू कहता है कल सुबह से ही सिर्फ चाय पीकर हैं, तो सिर नहीं चक्कर देगा।
ऐसी ही इंटरेस्टिंग किताबें कुछ बेहतरीन आवाजों में सुनिए सिर्फ ऑडियो पिटारा पर।
ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।